तफसीर सूरत अस-सजदा मक्की सूरत है। इसके 3 रुकू, 30 आयात, अल्फाज और कलिमात की तादाद 380, 380, जबकि हुरूफ 1518, 1518। सूरत सजदा के बारे में हमें हदीस में मिलता है, ये सही बुखारी की रवायत है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन फजर की नमाज में अलिफ लाम मीम सजदा पहली रकत में और दूसरी रकत में हल अता अलल इंसान सूरत दहर पढ़ा करते थे। इसी तरह ये भी सही सनद से साबित है, ये तिरमिजी की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरत अलिफ लाम सजदा और सूरत मुल्क पढ़ा करते थे। इन दोनों अहदीस से सूरत अलिफ लाम मीम सजदा जो है इसकी अहमियत और फजीलत जो है वो जाहिर होती है। इस सूरत का मौजू तौहीद, आखिरत और रिसालत है और इन्हीं तीनों हकीकतों पर दावत देना है। और तौहीद, आखिरत और रिसालत मक्की सूरतों का खासा है, मक्की सूरतों का खास मजमून है। और तौहीद, आखिरत और रिसालत ये दीने इस्लाम की फाउंडेशन है, बुनियाद है। दीने इस्लाम की जो इमारत थी, जो कि मदनी जिंदगी में रखी गई, तो उसकी फाउंडेशन जो थी वो मक्की जिंदगी में मजबूत की गई। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुकत्तात है। तंजीलुल किताब ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, तंजीलु नाजिल की गई। तंजील जो है नून जालाम, उसका मतलब होता है कि नाजिल करना, उतारना। तो तंजील जो है इसके मानी सिर्फ उतारना नहीं, बल्कि खास एहतमाम के साथ दर्जा बदर्जा उतारना। आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक कुरान मजीद जो है इसके बारे में गवाही दी जा रही है कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, इसके किताबे इलाही होने में कोई शक नहीं है। और साथ ही फिर इसका मकसद बताया गया। अब ये कहा जा रहा है कि इसको उतारा नहीं गया सिर्फ, बल्कि जरूरत के मुताबिक दर्जा बदर्जा खास एहतमाम से इसको उतारा गया। तंजीलू नाजिल की गई, उतारी गई, अल किताबु खास ये किताब कुरान मजीद, ला रैब फीही इसमें कोई शक नहीं, मिन रब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन की तरफ से। क्योंकि कुरैश और यहूद जो थे वो क्या करते थे, वो इस बात पर शक करते थे, वो कहते थे ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं की जाती, और वो इल्जाम लगाते थे कि ये किताब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखते हैं या किसी से आप सीख कर इसको बयान करते हैं। फरमाया अम यकूलू नफ्तराहू, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद गढ़ लिया है। इफ्तराहू की जमीर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई है। क्या वो कहते हैं कि ये कुरान इसने खुद गढ़ लिया है। बल हुवल हक्कु मिर रब्बिका, बल्कि हुवल हक्कु कुरान तो हक है, मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से। तो पीछे कहा गया कि ला रैब फीही, अब इसमें कोई शक नहीं, ये बात काफी थी ना, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये हक है तेरे रब की तरफ से। तो मानी क्या है कि कुफार के इल्जाम की तरदीद करने के साथ साथ फिर कहा जा रहा है कि ये हक है तेरे रब की तरफ से। तुम इसे रात कहते हो, ये रोजे रोशन की तरह है, ये तो सूरज है जो चमक रहा है। बल हुवल हक मिन रब्बिका, ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है। क्यों? इसका मकसद बताया जा रहा है, लितुनज़िरा, ताकि तू मुतनब्बे करे, ताकि तू डराए कौमन, एक ऐसी कौम को, कुरैश वालों को, मैं आता हूं मिन नजीरिन, जिनके पास नहीं आया था कोई डराने वाला, मिन कबली का आपसे पहले, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हदायत पा जाए। अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि कुरान मजीद जो है इसको नाजिल करने का मकसद क्या था कि अरबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी थे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अरबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई और नबी नहीं आया था, तो इसलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया ताकि लोगों को जो है वो डराया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के जमाने में कहते हैं 15 लोग हुनाफा के नाम से याद किए जाते थे। बात की राय है कि इससे भी कुछ बढ़कर थे, और लेकिन ये कि करीब के जमाने में कोई नबी जो है वो नहीं आया था, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया। तो आपकी बेसर से तकरीबन 2500 साल का अरसा पहले का, यानी आपकी बेसर से पहले तकरीबन 2500 साल का अरसा गुजरा कि अरब में कोई नबी नहीं भेजा गया था। तो जितने नबी आए, जो भेजे जा रहे थे, आए तो थे, कहाँ भेजे जा रहे थे, वो सारे शाम और फिलिस्तीन के इलाके में भेजे गए थे। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाना जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से तकरीबन 2500 साल पहले था, और आखिरी पैगंबर जो अरब की सरजमीन में भेजे गए वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, और उनको गुजरे हुए भी तकरीबन 2000 साल गुजर चुके थे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है। तो वो लोग जो कि तौहीद के बारे में कुछ जानते थे या कुछ दीने इब्राहिमी पर थे, तो वो उनके बारे में आता है कि 15 थे या इससे भी ज्यादा थे, और शिर्क और बुत परस्ती का जो रवाज था अरब के अंदर वो अमर बिन लोही नामी एक शख्स ने शुरू किया था। अमर बिन लोही, आयन मीम रा वो, और उसने जो है वो बुत लाकर मक्का में इंट्रोड्यूस करवाए, मुतारिफ करवाए, और इस तरह जो है बुत परस्ती मक्का में जो है अरब में शुरू हो गई। अब यहाँ पर जो है कुरान को नाजिल करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजे जाने का मकसद बताया जा रहा है। क्या? इसको आप सर्कल कर लीजिए, लितुनज़िरा, ताकि आप डराए। और फिर डराने का मकसद क्या है? लअल्लहुम यहतदून, शायद कि वो लोग हदायत पा जाए। तो हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए इस फर्ज को अदा करना है। हमें भी जो लोग दावा करते हैं उन लोगों में शामिल होना है, और हमें जो है वो ये दुआ करनी चाहिए कि क्योंकि जमीन पर सबसे बेहतरीन काम वो है जो अंबिया ने किया, तो हमें भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो खुशकिस्मत लोग ये काम करते हैं उनमें, उनकी फहरिस्त में तू हमें भी शामिल कर ले और हमसे अपने दीन की खिदमत ले ले। हम बड़े ही हकीर हैं, हम बड़े ही कमजोर हैं, और हमारे पास इल्म भी नहीं है, अमल में भी कमी है, और हमें आता भी नहीं है कि कैसे करें। तो हमें करने की तौफीक भी दे, फिर तासीर भी दे, फिर उसे कबूल भी कर ले, और तू हमसे काम ले भी ले, और तू हमें बता भी दे कि हम तेरे दीन की खिदमत जो है वो कैसे करें, हम कैसे तुझे राजी करें। तो ये है मकसद, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुरान से जो है हमें क्या हासिल करना है। قرآن سے ہمیں ہدایت کو حاصل کرنا ہے. کوئی موجود نہیں تیرے سوا, کوئی معبود نہیں تیرے سوا, کوئی مقصود نہیں تیرے سوا. تو اے اللہ تو ہماری جو ہے وہ مدد کر, تو ہمیں قبول کر لے. بی بی مریم کی والدہ کی دعا بڑی ہی پیاری ہے کہ تو میری اس اولاد کو جو میرے پیٹ میں ہے اور اس کی نسلوں کو تو قبول کر لے, اور اے اللہ تو ہمیں بھی قبول کر اور ہماری نسلوں کو قبول کر لے. پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے, اور دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد اب پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں پیدا کیا. کبھی آپ سوچتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس ایسے ہی اس کو بنایا اور ایسے ہی اس کو ختم کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ دنیا کو بس پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ڈھا دے گا, اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن میں اتنے تکرار سے بیان کیا ہے, اتنے تکرار سے اور بار بار بیان کیا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بہت اہم ہوتی ہے اس کی تکرار کی جاتی ہے, اس کو بار بار جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اصل حقیقت کو پا لیں. فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ایک آسمان نہیں 7 آسمان, ایک زمین نہیں 7 زمینیں, الارض بھی اسم جنس ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. فی ستت ایام, 6 دنوں میں, یوم واحد ہے, ایام اس کی جمع ہے, اور ستہ جو ہے وہ 6 کو کہتے ہیں. تو صرف 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. تو اصل خالق اللہ ہے, اس عظیم الشان کائنات کا, اس سلطنت کا اصل مالک اللہ ہے. تو پھر معبود میں کسے ہونا چاہیے؟ اللہ کو ہونا چاہیے. تو خالق نے ان کو پیدا کر کے کیا کیا؟ پیدا کر کے کہیں چھپ کر نہیں بیٹھ گیا, بلکہ حکومت کر رہا ہے. ثم استوى على العرش, پھر اس کے بعد وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. تو یہ استوا, استوا جو ہے اس کے معنی ہے قائم ہوا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الاستوا معلوم, والکیف مجھول, والسوال عنہ بدع, والایمان بہ واجب. یہ میں بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں, میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے الاستوا معلوم. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر قائم ہے, وہ عرش پر جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, عرش پر قائم ہے. استوا معلوم. والکیف مجھول, کیفیت, اس کی حکومت کی جو کیفیت ہے وہ غیر واضح ہے, یعنی وہ کس طرح سے قائم ہے ہمیں نہیں یہ پتا, بس اللہ کو ہی پتا ہے. پھر تیسری بات, والسوال عنہ بدعہ, اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے. چوتھی بات, والایمان بہ واجب, اور اس پر ایمان لانا, جو کچھ ہمیں پتا چل گیا اس پر ایمان لانا واجب ہے. تو یہ ہے عرش پر اللہ کی جو حکومت کرنا ہے, اس کی کیفیت کہ بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. تو آپ دیکھ لیں کہ دون جو ہے یہ ہٹ کر, سوائے, یہ سب معنی دیتا ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی मदद करने वाला है हामी और मददगार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई जो है सिफारशी है। उसके आगे कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। तो ये भी दरअसल अल्लाह की किबरियाई बयान की जा रही है कि जब अगर अल्लाह अजाब देना चाहे तो उसको कोई टाल नहीं सकता। कोई ऐसा सिफारशी नहीं है जो सिफारिश कर ले, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। अफला ततदक्करून, फिर तुम क्या होश में ना आओगे? यहाँ पे इसके क्या मुराद है कि क्या तुम होश में ना आओगे? इसके मानी है कि फिर तुम अल्लाह की बंदगी क्यों नहीं करते, फिर तुम अल्लाह के आगे क्यों नहीं झुक जाते। अब आयत नंबर जो 5 है इसमें मुशरिकीन के एक खास गुरोह की तरदीद की गई है। तो ये समझते थे कि अल्लाह ताला कायनात में एक दूर दराज इलाके में है बस कहीं पर, और इसलिए उन्होंने जमीन पर और खुदा बना लिए। तो कहा युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दी, युदब्बिरु वो तदबीर करता है, अल अमरा तमाम कामों की, वो तमाम मामलात की तदबीर करता है। मिनस समाई इलल अर्दी, आसमान से जमीन तक, आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की तदबीर अल्लाह करता है। यानी आसमान से मुराद है जहां पे अल्लाह का अर्श और लोहे महफूज है, और अल्लाह ताला वहां से जमीन पर अहकाम नाजिल करता है, तदबीर करता है, और जमीन पर जो है उन अहकामात को नाफिज करता है। मसलन जिंदगी, मौत, सेहत, बीमारी, किसी को देता है, किसी को मना करता है, किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को इज्जत देता है, किसी को जलील करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आसमान से जमीन तक जो अपने मामलात हैं उसके मुताबिक हकूमत कर रहा है। फिर सुम्मा यारुजु इलेही, सुम्मा फिर यारुजु ऐन रा जीम, इसका मतलब है के रुजू करना, चढ़ना, फिर चढ़ते हैं, जाते हैं। यारजु चढ़ते हैं, जाते हैं, इलेही इसकी तरफ, फी योमिन एक दिन में। फिर इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके पास जो है वो जाती है। तो क्या चीज उसके पास जाती है? तुम यारजु फिर लौटती है, फिर जाती है इलेही अल्लाह की तरफ, फी योमिन एक दिन में। तो ये जो ऊपर कहा ना युदब्बिरुल अमरा, तो वो मामलात जो है वो उनके फैसले करता है, उसकी तदबीर करता है। तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि फिर उसकी रिपोर्ट, उस तदबीर की रुदाद ऊपर अल्लाह के पास जाती है। काना मिकदारहु, जिसकी मिकदार है अल्फा सनतिन, 1000 साल, मिम्मा तउदून, तुम्हारे शुमार से। यानी एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल बनती है, उसमें उस पूरी जो इंतजामात हैं, जो तदबीर की रुदाद है, वो ऊपर अल्लाह के पास जाती है। मुफस्सरीन कहते हैं कि एक ही दिन में फरिश्ते जो हैं वो नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, और फरिश्ते जो एक दिन में फासला तय करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का, वो इतना ज्यादा है कि गैर फरिश्ता जो है वो 1000 साल में वो वक्त तय करे। जैसे आम लोग जो हैं, जैसे इंसानों को कहा जा रहा है तुम्हारी गिनती के मुताबिक, फरिश्तों का जो एक दिन है तुम्हारी गिनती के मुताबिक वो 1000 साल बनते हैं। और वो 1000 साल में, यानी अपने एक दिन में वो क्या करते हैं, वो पूरी रिपोर्ट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। तो इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी कायनात में हो रहा है, तो फिर उसकी रिपोर्ट जो है, लोगों के अमाल की रिपोर्ट जो है वो अल्लाह के सामने जो है वो पेश की जाती है, अल्लाह के सामने हाजिर की जाती है। इससे क्या बात पता चलती है कि फरिश्ते जमीन वालों के अमाल लिखते जाते हैं और फिर उसको अल्लाह के पास जाकर जो है वो पेश करते हैं। ये है इसके माने, क्योंकि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर जमीन वालों के मुतल्लिक जो फैसला करता है, किसी की जिंदगी का, किसी की मौत का, किसी की इज्जत का, किसी की जिल्लत का, किसी की महरूमी का, किसी की मोहताजी का, किसी की सेहत का, किसी की बीमारी का, तो जो है वो अल्लाह के उन फैसलों को फरिश्ते नाफिज करते हैं और अल्लाह जो है फिर उनकी रिपोर्ट भी लेता है। ये जो है सुम्मा यारुजु इलैही, यही इसके मानी है कि फरिश्ते जो हैं फिर अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं, अल्लाह ही को इंसानों के अमाल की जो है वो रिपोर्ट देते हैं। एक तो फरिश्ते जैसे असर के वक्त फजर के असर और फजर के वक्त फरिश्ते जो हैं इनकी ड्यूटी तब्दील होती है, एक तो ये मुराद है। और दूसरा मुराद क्या है कि हिसाब का दिन, दुनिया का आखिरी दिन, जब तमाम दुनिया के मामलात फना होकर अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे, सुम्मा यारुजु इलैही, फिर अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे सारे मामलात एक ऐसे दिन में जिसकी मकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। तो इससे मुराद कयामत का दिन हो सकता है और योम हिसाब का दिन भी। ज़ालिका आलिमुल गैबी व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम। यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफात का तारुफ करवाया गया है कि फरिश्ते, जिन, नबी और तुम्हारे माबूद जो हैं वो गैब का इलम नहीं जानते। ज़ालिका आलिमुल गैब, वही है इल्म रखने वाला पोशीदा का, व शहादती और जाहिर का, अल अजीजुर रहीम, जबरदस्त भी है और रहीम भी। यानी अगर कोई जुल्म कर रहा है तो अल्लाह उस पर गलबा रखता है, और अगर कोई रुजू करता है तो अल्लाह उसके लिए रहीम है। अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़ा, जो चीज भी इसने बनाई खूब ही बनाई, सुभान अल्लाह। तो अल्लज़ी अहसना को ज़ात जिसने खूबसूरत बनाई, आसना बहुत ही खूबसूरत, कुल्ला शाइन हर चीज, खलकहू पैदा की इसने। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुमा अंत हसन तखलकी फहसिन खुलुकी, कि जिस तरह आपने मेरी सूरत जो है वो खूबसूरत बनाई है, मेरा इखलाक भी अच्छा बना दे। तो اللهم انا نسالوك الهدى والتقى والعفاف والغنى, تو اللہ تعالی سے حسن اخلاق اور حسن کردار کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا و بدا خلق الانسان من طين, اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی, گیلی مٹی سے۔ انسان کو اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ انسان تیری پیدائش کا مرحلہ کیا تھا, کیسے تیری نسل جو تھی وہ چلی, کہ تمہیں جو ہے وہ گیلی مٹی سے تمہاری ابتدا کی گئی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, پھر جو ہے فرمایا ثم جعل, پھر بنائی, نسله اس کی نسل, نون سین لام جو ہے وہ اس کے معنی جدا ہونے کے بھی ہوتے ہیں, اور ایک نسل دوسری نسل سے جدا ہو جاتی ہے نا, پیچھے آپ نے سورت کہف میں بھی پڑھا تھا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو پھر ینسلون, جیسے کہ پھسلتے جائیں گے یعنی جدا ہوتے جائیں گے۔ تو ثم جعل نسلہ, پھر جو ہے اس کی انسان کی جو ہے وہ ایک نسل پیدا کی, من سلالتین, سلالہ جو ہے سین لام لام اس کا روٹ ہے, اور सुलाला जो है ये मिट्टी की एक किस्म को कहते हैं, और इसके मानी होते हैं जैसे निचोड़, खुलासा। तो कहते हैं कि इससे मुराद है नुतफा, क्योंकि जो इंसान है ये मिट्टी से पैदा हुआ है ना, तो उसी मिट्टी से वो हकीर सा जो नुतफा है उससे इंसान की नस्ल जो है वो आगे चलती चली जाती है। तो यहाँ पर इंसान की जो पैदाइश के मराहिल हैं उनका जिक्र किया जा रहा है, और मकसद है कि इंसान अपनी हैसियत पर गौर करे। मिट्टी और इसकी मुख्तलिफ हालतें कुरान में 9 बयान की गई हैं। तीन तो आपको पता ही है कि गीली मिट्टी को कहते हैं जिसमें भूसा भी ना हो, और जो है यहाँ पर सुलाला किसी शय से निकाली हुई चीज को कहते हैं, खुलासा निचोड़। तो मुराद है नुतफा। तो इंसान जो है उसकी नस्ल जो है वो एक नुतफे से, हकीर से नुतफे से, मिट्टी के खुलासे निचोड़ से नुतफा मुराद है, उससे नस्ल को चलाया गया। और वो नुतफा कैसा होता है? मिम्मा इन महीन, पानी होता है महीन। महीन कहते हैं कि बहुत ही हकीर सा, हकीर से पानी से इंसान की जो है वो इब्तदा की गई। तो हा वो नून अगर हा पर पेश दी जाए तो इसके मानी नरम के होते हैं, और अगर पेश दी जाए तो जलील को कहते हैं। वैजा खातबहुल जाहिलूना कालू सलामा, के अल्लजीना यमशूना इलल अर्दी हौना, कि वो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, और पेश हो तो जलील के मानी होते हैं। तो यहां पर इससे मुराद जो है हकीर, नरम, मलायम उसके हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया, और इसमें से खास तौर पर इंसान का जिक्र किया जा रहा है। तो नहीं है चीज नकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीज भी बनाई है उसको बेहतरीन बनाया है, और किसी चीज को भी कुदरत के इस कारखाने में जो है वो निकम्मा नहीं बनाया गया, फजूल नहीं बनाया गया। हर चीज के पैदा करने का कोई ना कोई जो है वो मकसद है, जिसमें कीड़े मकोड़े भी आते हैं, सांप बिच्छू शेर वगैरह। तो जो कुछ भी पैदा किया गया है तो उसको पैदा करने का कुछ ना कुछ जो है वो मकसद है, और बस उन सारी चीजों में से सबसे बेहतरीन फिर क्या है? लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, उनमें सबसे बेहतर जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने उसकी हैसियत जो है उसको याद दिलाया है, ताकि इंसान जो है फख्र व गुरूर में मुब्तिला ना हो, उसके अंदर जो है वो फख्र पैदा ना हो, वो तकबुर में मुब्तिला ना हो। इसलिए इंसान को उसकी असल हैसियत जो है उसको याद दिलाया गया है कि हकीर से पानी से इंसान तेरी जो है वो इब्तदा की गई। सुम्मा सवाहू, फिर इसको संवारा, सवाहू दुरुस्त किया इसको, जैसे फिनिशिंग टच, वनफखा फीही मिन रूहिही, और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। अब आप देखिए, अब यहां पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान के अंदर इल्म, फिकर, शऊर, इरादा, फैसला, जो बहुत से औसाफ हैं, वो सब अल्लाह ही की सिफात का अक्स है। अल्लाह के इल्म से इंसान को इल्म मिला, अल्लाह की हिकमत से अल्लाह ने इंसान को दनाई दी, और इस तरह ये जो नस्ल चलाना और उसमें अपनी रूह फूंकना, तो इसके यही माने हैं कि फिर वो अल्लाह ही है कि जिसने जो है वो अपनी सिफात में से इंसान को सिफात जो है वो अता की। व नफखा फीही मिन रूहिही, और फिर उसमें अपनी रूह जो है उसको फूंक दिया, यानी ठीक ठाक करने के बाद फिर उसमें रूह फूंकी। और इससे मुराद ये भी है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसमें जो है वो जान डाल दी जाती है। वजाल लकुम अस्समा वल अबसारा वल अफिदा कलीलम मा तशकुरून, और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए, तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। अब यहां पर जो है अल्लाह ताला ने खास तौर पर तीन जो जिस्म के अज़ा हैं इनका जिक्र किया है, क्योंकि अगर अल्लाह चाहता एक बंदर, एक भेड़िया, एक मगरमच्छ या एक कौवा भी तो बना सकता था ना, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें जीता जागता इंसान बनाया। तुम्हें एक फिनिशिंग टच देने के बाद तुम्हें तुम्हारे जिस्म में माँ के पेट में तुम्हारे अच्छे अज़ा बनाए, मुकम्मल अज़ा बनाए, तुम्हारा निकसुख दुरुस्त किया, फिर तुम्हें रूह फूंक दी, और फिर तुम्हें जो है वो सुनने के लिए कान दिए ताकि तुम बातें सुन सको, तुम्हें देखने के लिए आंखें दी ताकि तुम अल्लाह की नेमतों को देख सको, और तुम्हें सोचने समझने के लिए दिल दिए ताकि तुम जो है वो समझ सको बातों को। लेकिन ए इंसान, तुम्हारा हाल क्या है? कलीलम मा तशकुरून, कि तुम लोग कम ही शुक्र अदा करते हो। ये है खास बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि इन सारे मराहल पर गौर तो करो कि तुम क्या थे और तुम्हें क्या बना दिया। तुम्हारा बाल बाल, तुम्हारे खून का कतरा कतरा, तुम्हारी हर सांस और तुम्हारा एक एक रोंगटा जो है वो अल्लाह की रबूबियत का, अल्लाह की अनायत का शुक्रगुजार उसको होना चाहिए था कि अल्लाह ने, अगर अल्लाह मुझे ना बनाता तो फिर क्या होता, अगर अल्लाह मुझे सलाहियतों से ना नवाजता तो फिर क्या होता, और अगर अल्लाह मुझे एक इंसान बनाने की बजाय कोई जानवर बना देता फिर क्या होता, और जो है वो अगर जिस्म के अज़ा मुकम्मल ना होते, पूरे ना होते, तो फिर क्या होता। तो क्या करना है? अल्लाह की नेमतों पर जो है वो सोचना है, अल्लाह का शुक्रगुजार होना है, और फिर अल्लाह की अदा करदा ये जो जिस्म है इसको अल्लाह की बंदगी के कामों पर जो है वो खर्च करना है, और हमें अपनी जिंदगी में से नशुक्री को खत्म करना है। अब आप देखें, जबान अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे? जैसे हमारी जो दोस्त हैं और उन्हें जो ब्रेन का कैंसर हुआ और उसके बाद अब वो कुव्वते गोयाई से इस वक्त महरूम है, वो बात नहीं कर सकती। आप सोचिए कितनी बेबसी है, कितनी आजजी है कि बात नहीं कर सकती। देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो बोल नहीं सकती कि वो क्या चाहती हैं, वो क्या करती हैं, आवाजें निकालती हैं मुख्तलिफ ना। तो आप देखें कि अल्लाह ने हमें जबान देकर कितना बड़ा एहसान किया है। हमारे वो मुंह के अतराफ में फिरती है, जरूरत के मुताबिक खाने को कभी आगे कभी पीछे लेके जाती है, और फिर जो है वो खाना जो है हम दांतों की चक्की में उसको पीसते हैं और हम जबान से बोलते हैं ना। अब देखें कि अगर जबान से हम खाने को काट तो रहे हैं, पीस भी लिया, लेकिन अगर ड्राई है जबान, खुश्क है, तो खाना निगल तो नहीं सकते ना। तो जबान के नीचे एक चश्मा अल्लाह ने जारी कर दिया जिससे लियाब बहता है और वो जरूरत के मुताबिक हमारे खाने में शामिल होता रहता है, यहां तक कि खाना गूंदा जाता है, और फिर इस गूंदे में नरम खाने को मुंह से मेदे तक कौन ले जाता है? उसको हाथ से तो मेदे तक नहीं पहुंचा सकते ना, उसके लिए अल्लाह ताला ने कौवा और नरखरा तैयार किया। अब आप देखें कि खाना लेने के लिए वो जो जुबान के आगे का हिस्सा है खुल जाता है, बंद हो जाता है, निगलते हैं, खाना अंदर चला जाता है। एक एक चीज पर आप गौर करें कि ये सारा जो करता है ये कौन करता है? वाइन ताउदू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो तो तुम कर नहीं सकते। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। तो इसके बावजूद भी इंसान क्या करता है, रोता रहता है, ना शुक्री करता रहता है, ये नहीं है, बड़ी मुश्किल है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप उनसे पूछें जिनके पास कान नहीं है, आप उनसे पूछें जिनके पास आंखें नहीं है, आप उनसे पूछें जिनके पास दिल नहीं है। तो अल्लाह की नेमतों का फिर क्या करें, हम शुक्र अदा करें। मैं आपको एक ये छोटा सा वाक्या सुनाती हूँ। जैसे एक शख्स जो था वो शिकवा कर रहा था कि मैं बहुत गरीब हूं। तो किसी ने उसे कहा कि क्या तुझे पसंद है कि तू अंधा हो जाए और तुझे 10,000 दिरहम मिल जाए। उसने कहा नहीं। फिर कहा गया तुझे पसंद है कि तू गूंगा हो जाए और तुझे 10,000 दिरहम मिल जाए। उसने कहा नहीं। कहा क्या तुझे पसंद है कि तुझे 20,000 दिरहम मिल जाए और तेरे हाथ पांव कटे हुए हों। उसने कहा नहीं। फिर कहा क्या तुझे पसंद है कि तुझे 10,000 दिरहम मिल जाए और तू दीवाना हो जाए। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा क्या तुझे शर्म नहीं आती कि अपने मौला का शिकवा करता है और तेरे पास उसका 50,000 दिरहम का माल मौजूद है। इसी तरह एक शख्स तंगदस्ती की वजह से परेशान हुआ तो उसने ख्वाब देखा कि एक आदमी उसे कहता है क्या तू पसंद करता है कि हम तुझे 1,000 दिनार दें और सूरत अनाम तुझको भुला दें। उसने कहा नहीं। फिर कहा सूरत हूद, कहा नहीं। फिर कहा सूरत यूसुफ, कहा नहीं। तो उसने कहा कि तेरे पास 1,00,000 दिनार की रकम है और फिर भी तू शिकवा करता है। और ये एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है, मैं अक्सर इस पे सोचती हूँ। ये इब्ने समाक थे, सीन मीम अलिफ काफ, कश्मीर वाला काफ। ये बुजुर्ग थे, स्कॉलर थे, हारून रशीद के पास गए और हारून रशीद को नसीहत करने के लिए उन्होंने कहा कि अब देखें कि कैसे उन्होंने नसीहत की ना। पानी का एक प्याला मंगवाया और जब पानी का प्याला लाया गया तो हारून रशीद को नहीं दिया। हारून रशीद से कहा क्या अगर आप प्यासे हैं और आपको किसी वजह से पानी ना मिले तो आप क्या करेंगे। तो हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए फिर मेरी जो हुकूमत है आधी हुकूमत मैं दे देना चाहूंगा ताकि बस मुझे किसी तरह मेरी प्यास बुझ जाए। तो उन्होंने कहा इब्ने समाक ने कि अच्छा अल्लाह बरकत दे ठीक है आप ये पानी मुफ्त ही पी लें बगैर आधी सल्तनत दिए हुए। जब वो पानी पी चुके तो इब्ने समाक ने कहा कि अगर ये पानी जो आपने पी लिया है अगर अब ये पानी आपके पेट में रुक जाए यानी आपका पेशाब बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे। कहा कि जो बाकी आधी सल्तनत है ना मैं वो भी दे दूंगा ताकि मैं इस मुश्किल से निजात पा सकूं। तो उन्होंने कहा कि एक प्याला पानी के मुकाबले में आपकी इस हुकूमत की क्या हैसियत है, आप जरा गौर तो करें। तो आप देखें कि इसी तरह आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमें जो है बेशुमार नेमतों से नवाजा है और ये नेमतें लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन नेमतों पर गौर व फिक्र करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए और फिर अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी चाहिए। हजरत फुजैल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे नेमत पर हमेशा शुक्र अदा किया करो क्योंकि कम ही कोई नेमत है जो किसी कौम से छीनने के बाद उनको दोबारा मिल गई हो। और जब इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको और नेमतों पर नवाजता चला जाता है। जैसे आप केला खाते हैं, आप देखें केले को कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने लिबास दिया है, कितना नरम है, कितने मजे से खाते हैं, लेकिन आप खाते हैं छिलका फेंक देते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते। आप पानी पीते हैं और आप जो हैं वो पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपको, आप बिस्तर पर लेटते हैं और लेटते ही आपको नींद आ जाती है। कितनी बड़ी नेमत है, कभी आपने सोचा? लोग कितनी कितनी गोलियां खाते हैं और उनको नींद नहीं आती। अगर कभी सर में दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, तो अंदाजा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। तो एक एक नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस मुसीबत में मुब्तिला किया, इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये वो मुसीबत नहीं है जो कि दीन के बारे में है। यानी शुक्र है दुनिया की मुसीबत है, मेरे दीन की मुसीबत नहीं है। फिर वो कहते थे एक और दूसरा शुक्र करता हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तो इससे ज्यादा मुझे मुसीबत में डाल सकता था। फिर कहते थे कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र करता हूं कि जो तूने जो भी मुझे आजमाइश दी है, मैं इस पे सबर कर रहा हूं, तो मुझे इस पर सवाब मिलने की उम्मीद है। फिर वो चौथी बात कहते थे कि अल्लाह मैं तेरे फैसले पे राजी हूं, तो यानी मैं तकदीर पर ईमान लाया हूं, मैं उससे महरूम नहीं हूं। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत अंदाज है ना। एक दफा एक बुजुर्ग थे साहल बिन अब्दुल्ला, उनके घर में चोर आ गया, उनका सारा सामान ले गया। उन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर शैतान दिल में दाखिल होता और ईमान बिगाड़ देता फिर मैं क्या करता। तो असल बात क्या है, कलीलम्मा तश्कुरून, कि तुम लोग कम ही शुक्र अदा करते हो। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 10 से लेकर 14 तक जो कयामत के मुनकिर थे उनके शुभात का जवाब दिया जा रहा है और फिर अंजाम बताया जा रहा है। वकालू, और वो कहते हैं आयजा दलल ना फिल अर्दी, के जब हम मिलिया मेट हो जाएंगे, जब हम रल मिल जाएंगे, फिल अर्दी जमीन में, हा इन्ना लफी खलकिन जदीद, तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। तो ये पूछते थे कि जब हम मट्टी में रल मिल जाएंगे तो क्या अल्लाह ताला हमें दोबारा पैदा करेगा। बल हुम बिलिक़ाए रब्बिहिम काफिरून, असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात ही के मुनकिर हैं। ये नहीं है कि इनको समझ नहीं आ रहा, बल्कि ये हिसाब किताब का इनकार करते हैं। ये हिसाब किताब एहसास से जवाबदेही से जो है वो मुनकिर हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल मसला ये नहीं है कि इनको यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह पैदा नहीं कर सकता, असल मसला ये है कि ये हिसाब किताब जो है उसके मुनकिर हैं। कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि यतवफ्फाकुम के मौत देगा तुमको मलकुल मौती, मौत का फरिश्ता, अल्लाजी वुक्किला, वो जो मुकर्रर किया गया है, वो जिसे वकील बनाया गया है बेकुम तुम पर, तुम माइला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम्हें अपने रब ही की तरफ जो है वो पलटा कर लाया जाएगा, फिर तुम अपने रब ही की तरफ पलटा कर लाए जाओगे। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि तुम समझते हो कि तुम्हें जो है वो मौत नहीं मिलेगी। कहा कि नहीं, बल्कि मौत का फरिश्ता मुकरर किया जा चुका है और जो ही वक्त आएगा तो वो फरिश्ता जो है वो आकर तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा, और रूह के कब्ज करने में फरिश्ता जर्रा बराबर जो है वो देर नहीं करता। जो वक्त मुकरर है फरिश्ता उसमें आता है और आकर अपना वो फर्ज जो है वो अदा करता है, एन उस जगह पे उसी वक्त लम्हा बराबर ताखीर नहीं की जाती। ये है मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम। और एक आयत में तो मलाइका का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, अल्लाजीना तत्तवफ्फाहुमुल मलाइका, तो इजराइल अलैहिस्सलाम तनहा ये काम नहीं करते, बहुत से फरिश्ते उनके साथ होते हैं। इससे ये बात भी पता चलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब रूह कब्ज कर ली जाती है तो फिर तुम अपने रब की तरफ ही पलटा लाए जाओगे। तो रूह निकालने के बाद फरिश्ता जो है वो اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جاتا ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ کس کا مقرر کردہ ہے؟ یہ اللہ کا مقرر کرتا ہے, اور اس میں کوئی ذرا برابر کمی بیشی نہیں ہونے والی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اس حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ کر حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. وَلَوْ تَرَى, اور کاش کہ تم دیکھتے, اِذِ الْمُجْرِمُونَ, جب مجرم نا کے سو, اس کے معنی ہے کہ جھکائے ہوئے ہوں گے. نون کاف سین, اور اس کے معنی ہے جھکانا, سر کو نیچا کرنا, سر کو جھکانا, کہ جب مجرم جو ہیں وہ جھکائے ہوئے ہوں گے سروں کو, رؤوسہم, اپنے سروں کو, عند ربہم, اپنے رب کے پاس. جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, تو یہاں پہ یہ مجرمین کی بے بسی جو ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. تو اس وقت مجرم جو ہے ندامت سے, شرمندگی سے, خجالت سے سر جھکا کر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی سے درخواست کریں گے. نمبر ایک, ربنا ابصرنا, اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا. وسمعنا, نمبر دو, اور سن لیا. نمبر تین, فرجعنا, بس آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے. نمبر چار, نعمل صالحا, تاکہ ہم عمل صالح کریں. اور نمبر پانچ, انا موقنون, اب ہمیں یقین آ گیا ہے, یعنی اب ہم مان گئے ہیں کہ ہاں واقعی یہ قیامت ہے, اور یہ واقعی حساب کتاب ہے, اور یہ بڑا ہی سخت مشکل وقت ہے, بس آپ ہمیں ایک چانس دے دیجئے. وَلَوْ شَيْنَا لَآتَيْنَا, وَلَوْ شَيْنَا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے, لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, تو اگر ہم چاہتے تو ہم جو ہے وہ ضرور دیتے. لَآتَيْنَا, البتہ ہم ضرور دیتے, كُلَّ نَفْسٍ, ہر نفس کو, ہر شخص کو, هُدَاهَا, اس کی ہدایت. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے, یعنی اب جو تم جو ہے وہ چانس مانگ رہے ہو, اللہ تعالی فرماتے ہیں ولو شئنا, اور اگر ہم چاہتے, لآتینا کل نفس ہداہا, تو ہم پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. اس کے معنی ہے کہ اگر جبری ہدایت دینی ہوتی, زبردستی ہدایت دینی ہوتی, تو دنیا میں ہی ہدایت دے دیتے. یعنی اب تم غیب کا پردہ اٹھ چکا ہے, اب تمہیں ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے, اور اب تم ہدایت چاہتے ہو, تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ولیکن حق القول منی, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی. کیا بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس نے نسل انسانی کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندے تو تیری پیروی میں نہیں آئیں گے, لیکن جو تیری اطاعت کریں گے تو میں کیا کروں گا کہ پھر میں جہنم کو ان نافرمان لوگوں سے بھر دوں گا. تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, کہ یہ جو جہنم میں بھرنے والی میری بات ہے نا, سچ ہو گئی کہ جو نافرمان ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے. کون کون جائے گا اس میں؟ جہنم میں جائیں گے جن بھی اور انسان بھی. کون؟ جو سارے نافرمان ہیں. یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, فذوقوا, پس چکھو, बीमा ये सबब के लिए आया है, बा वजह यानी जो कुछ तुमने अमल किए हैं उसकी वजह से तुम चखो, नसी तुम ले योम कुम्हाजा कि तुमने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था, तुम दुनिया के ऐश में गुम थे और तुम भूल गए, तुमने याद ही नहीं किया कि कभी मुझे अपने रब के सामने हाजिर होना है। तो आज तुम्हारे जहन्नुम में जाने की ये वजह है कि नसी तुम लिका अयोम कुम्हाजा कि तुमने आखिरत के दिन की मुलाकात को टाल दिया, नजरअंदाज किया। इन्ना नसीना कुम, आज हम तुम्हें भी भुला देंगे, आज हम तुम्हें फरामोश कर देंगे, कोई चांस नहीं है। वदूकू अजाब अलखुल्द बिमा कुंतुम तामलून, चखो अब हमेशा के अजाब का मजा कि दुनिया में जो कुछ तुम अमल करते थे, यानी जो कुछ तुमने बोया है अब उसे काटना होगा, ये तुम्हारे अमलों की जजा है, ये तुम्हारे अमलों का बदला है, ये उसी की सजा है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 15 से लेकर 22 तक कुरान पर ईमान लाने वालों की बात सिफात का जिक्र है और उनकी जजा भी है, और इसी तरह इनकार करने वालों की सजा का भी जिक्र है। बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही बेहतरीन सिफात हैं जिनका अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया है। इन्नमा युमिनु बिआयातिना, हमारी आयात पर तो वो लोग ईमान लाते हैं, कौन लोग, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरु बिहा, कि जब उन्हें ये आयात सुनाकर नसीहत की जाती है कुरान के जरिए, जब उन्हें नसीहत की जाती है तो वो क्या करते हैं, खर्रु सुज्जदन, नंबर एक वो सजदे में गिर पड़ते हैं, सुभान अल्लाह। और यहां पर उनका सजदे में गिर पड़ना इसके मानी है अतात करना, अतात का रास्ता इख्तियार करना, कि वो क्या करते हैं कि वो अल्लाह की आयात की तस्दीक करते हैं, ईमान लाते हैं, अमल करते हैं। नंबर दो, वसबहू बिहम्द रब्बिहिम, और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं, इसके मानी है कि वो अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह की आयात की ताजीम करते हैं, अल्लाह के अजाब से डरते हैं। तो ये है उनका किरदार कि वो अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं। तो तस्बीह के मानी है पाकी बयान करना, और हम्द का मानी है कि अल्लाह की सिफात जो है उनका इकरार करना। फिर इसके बाद उनकी तीसरी सिफत है वहुम ला यस्तकबिरून, वो तकबर नहीं करते, तीसरी सिफत। और ये तकबर जो है ये उमुल अमराज है, हक के मुकाबले में अड़ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने नफ्स की किबरियाई को कबूल नहीं करते, क्योंकि नफ्स का बड़ापन जो है, मैं जो है, वो अल्लाह की अतात में रुकावट बनती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मैं को छोड़कर अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, वो शैतान की तरह, वो काफिरों की तरह जो है वो तकबर नहीं करते, बल्कि वो आजी खुशू खुजू का इजहार करते हैं। नंबर चार, आयत नंबर 16, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजई, तताजाफा इसका रूट है जीम फा वो, इसके मानी है जीन का घोड़े की पीठ से हट जाना, करार ना पकड़ना, बेकरार होना, क्योंकि घोड़े पर जब जीन होती है ना तो जो होता है घुड़सवार वो उस पर बैठता है, एक जगह टिक जाता है ना, जब जीन जीन जो होती है ऊपर डली हुई जो होती है जिसकी वजह से सवार उस पर टिक कर बैठता है, जब वो मौजूद नहीं होती तो वो सही से जमकर बैठ नहीं सकता, वो हट जाता है ना। तो इसी निस्बत से ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, बेकरारी की वजह से अपनी जगह बदलना या उससे अलग हो जाना। तो यहाँ पे है तताजाफा कि वो अलग रहते हैं, वो दूर हो जाते हैं, जुनूबहुम उनके पहलू, उनकी पीठें अलग रहती हैं, अनिल मदाजई द्वाद जीम आइन, पहलू के बल लेटना, पहलू के बल लेटना। तो मुराद क्या है कि बिस्तर पर लेटना, पहलू के बल लेटना, तो ये वो लोग हैं कि अलग रहती हैं इनकी पीठें पहलू के बल लेटने से, यानी बिस्तरों की लज्जत और राहत से ये अपने आप को महरूम रखते हैं। ये बिस्तरों पर लेटते नहीं हैं, तजाफा जुनूबहुम, इनके पहलू बेकरार रहते हैं, इनकी पीठें जो हैं वो अलग रहती हैं, अनिल मदाजई, बिस्तरों से। तो क्या करते हैं, यानी बिस्तरों से ये अलग रहते हैं, इसके मानी है कि आखरत का खौफ, अल्लाह की बाज पुर्ज का एहसास जो है इन्हें हर वक्त अमादा रखता है कि वो रातों को उठ उठ कर बिस्तरों की लज्जतों और राहतों से अपने आप को महरूम रखकर वो क्या करते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, ये इनकी जो है वो सिफ्त है, सिफ्त नंबर 5, जो पुकारते हैं अपने रब को खौफ के साथ। खौफ किस चीज का? खौफ जो है वो अल्लाह की पकड़ का, अजाब का, जवाबदेही का एहसास जो है वो उनको इतना खौफजदा कर देता है कि उन्हें नींद नहीं आती। और तमा किस चीज की होती है? उम्मीद होती है उन्हें जन्नत की, रब की रजा की, और वो अपने रब को जो है वो राजी करना चाहते हैं। तो ये कौन है? ये हैं कि जिन्हें अल्लाह का खौफ जो है वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ने पर आमादा करता है, वो तौबा इस्तग़फार करते हैं, वो तस्बीह करते हैं, वो दामन फैलाते हैं, वो हाथ उठाते हैं, दुनिया सो रही होती है, मजे कर रही होती है, ख्वाबे खरगोश के मजे, गहरी और मीठी नींद, और ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल की उम्मीद रखते हुए अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के अताब से और अल्लाह के पकड़ से जो है, गजब से जो है ये डरते हैं। तो ये कौन है? ये हैं रातों को उठ उठ कर अल्लाह को याद करने वाले, सुभान अल्लाह। तो ये है इनकी 5वीं सिफ्त। 6ठी सिफ्त क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने इनको रिस्क दिया है ये इसमें से खर्च करते हैं। तो अब ये नहीं कहा कि सारा कुछ खर्च कर देते हैं, बल्कि अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, रिस्क हलाल, तो उसमें से, पाक रिस्क में से ये क्या करते हैं कि जिनके हकूक हैं उनके लिए अल्लाह के रास्ते में देते हैं। तो एक तरफ नमाज कायम करते हैं, और यहाँ पे खास तौर पर तहज्जुद की नमाज का जिक्र है, और दूसरा जो है वो माल को खर्च करते हैं। तो याद रखिएगा कि नमाज और इन्फाक जो है ये ईमान के बाद दो ऐसे अमल हैं जिस पर पूरे दीन की इमारत खड़ी होती है, और आप पहले दिन के सबक से जो है इसको पढ़ रही हैं। और ये कौन है? ये है अल्लाह पर, अल्लाह की आयात पर ईमान लाने वाले, कुरान पर ईमान लाने वाले। अब इनकी जजा क्या है? शब्बेदारियों और कुर्बानियों का सिला जो है वो तसव्वुर से भी बालातर है। फला तालमु नफ्सुन, बस नहीं जानता कोई नफ्स, मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रते आयुन, कि जो कुछ को उख्फिया छुपा कर रखा गया, लहुम इनके लिए, मिन कुर्रते ठंडक, आयुन आंखों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ऐलान कर रहे हैं कि फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान इनके लिए छुपा कर रखा गया है, किसी को इसकी खबर नहीं है। जजा अम्बिमा कानू या मलून, ये उनके अमाल की जजा है, ये बदला है उनके उन अमाल का जो वो दुनिया में करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, रावी हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, قال الله تعالى, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, आदतु लिइबादी अस्सालिहीन, कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है, मा ला आइनुन रात, जिसे न कभी किसी आंख ने देखा, वला उजुनुन समियत, نہ کبھی کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کوئی انسان ہی کبھی اس کا تصور کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ جنت اور وہ خوبصورت جزا تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور ہی گزرا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے جنت، یہ ہے ایسی جزا. جیسے آپ کسی چیز کی تعریف کریں اور آپ کہیں ایسی ہے جیسے کبھی کسی نے دیکھی نہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ میرا اور آپ کا پیارا رب کہہ رہا ہے. اور یہ جزا کنہیں ملے گی؟ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور ہمیں یہاں پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے ان پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، یہ جو مومنانہ اوصاف ہیں یہ ہمیں بھی حاصل ہو جائیں. اللہ ہمیں عاجزی دے، راتوں کی عبادت نصیب کرے، دن کے فرائض بھی، اور راتوں کو گانا بجانا اور فلمیں اور گپ شپ اور فضولیات لاول حدیث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ عبادت کرنے والے بن جائیں، رت جگہ. اور یہ وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں اور جو اللہ کے خوف میں جاگتی ہیں. اور جب انسان عبادت کرتا ہے اللہ کو وہ عمل بڑا پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. آیت نمبر 18 ہے، افامن کان مؤمنن، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو، کمن کان فاسقا، وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اطاعت کرنے والا ہوتا ہے. فاسق، فسقا کے معنی ہوتے ہیں باہر نکلنا. تو فاسق کہتے ہیں خود مختار اور نافرمان کو. کہا کہ ایمان لانے والا، اطاعت کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فلہم جنات المعوی نزلم بما کانوا یعملون، بس رہے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ان کے لیے ہے باغات، الماوا رہنے کے لیے. تو ان کے لیے جو ہے وہ باغات ہے قیام گاہ کے لیے. ماوا جو ہے ٹکانے کو کہتے ہیں، ٹکانا، آوا یعنی جہاں پہ وہ لوگ پناہ لیں گے. نوزولم بما کانو یعملون، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے عمل کی جزا ہے. وہ کیا عمل کرتے تھے؟ نزول جو ہے اس مہمانی کو کہتے ہیں کہ مہمان کے سامنے اترتے ہی جو کچھ سامان میزبانی پیش کیا جاتا ہے تو اس کو نزول کہا جاتا ہے. اور جنات الماوا وہ جنتیں ہیں جن میں یہ اہل ایمان اول اول اتارے جائیں گے، پھر اس کے بعد اصل جنت میں بھیجے جائیں گے. یوں سمجھ لیں کہ ان باغوں کی حیثیت اہل جنت کے لیے ریسٹ ہاؤس کی ہوگی، اور پھر یہ باغ تمام اہل جنت کے لیے الگ الگ ہوں گے. جیسے جنات الماوا، سدرت المنتہا، مختلف نام قرآن نے جو ہے اس کے لیے استعمال کیے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ وہ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ ان کے وہ باغات ہیں جو ان کی مہمانی ہوگی اور ان کے عملوں کی جزا ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، خود مختاری اختیار کی، فَمَا هُمُ النَّارُ، بس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار، کلما ارادو، جب ارادہ کیا انہوں نے، ان یخرجو منہا، کہ وہ اس میں سے نکلیں، جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس جہنم سے نکل جائیں، اعیدو فیہا، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुटलाया करते थे। तो अब आप देखें कि इसके मानी है कि वो जहन्नुम के अजाब से कभी निकल नहीं सकेंगे। क्यों? जब वो निकलना चाहेंगे तो उनको धक्का दे के दोबारा उसी के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि इस आग के अजाब का मजा तुम चखो। क्यों? कि तुम अल्लाह की आयत को, तुम आखिरत के दिन को, तुम कयामत के दिन के हिसाब किताब को तुम झुटलाया करते थे। वला नुज़ीकन्नहुम मिनल अजाबिल अदना दूनल अजाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजून। अल्लाह ताला कहते हैं वला नुज़ीकन्नहुम, और हम जरूर ब जरूर जो है वो उन्हें चखाएंगे मिनल अजाबी अजाब अल अदना। अदना जो है, अदना के दो मानी है, दना यदनु दुनवन, एक तो है करीब होना और एक है दनिया यदनी दनन, दनाया घटिया। दुनिया आखरत के मुकाबले में करीब है, और दूसरा जो है दुनिया का अजाब आखरत के मुकाबले में हकीर है, छोटा है। तो कहा कि वला नुज़ीकन्नहुम मिनल अजाबिल अदना, तो हम उन्हें जरूर ब जरूर जो है दुनिया के अजाब चखाते रहेंगे, छोटे अजाब। और इसके क्या मानी है? मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद है दुनिया की जिंदगी की बीमारियां, अमवात, अलमनाक हादसे, नुकसानात, नाकामियां, इज्तमाई जिंदगी में तूफान, जलजले, सैलाब, कहत, फसादात, लड़ाइयां और दूसरी बहुत सी आजमाइशें जो कि दुनिया की जिंदगी में आती हैं। तो दुनिया की जिंदगी में हम जो है इन नाफरमानों को कई अजाब दिखाते रहते हैं, जो छोटे छोटे हैं और वो करीब की जिंदगी में है, दुनिया की जिंदगी में है। दून अल अजाबिल अकबरी, दूनी दूना सवाए अल अजाबिल अकबरी, बड़े अजाब के अलावा, और अजाबिल अकबर से मुराद है कयामत का अजाब। तो फरमाया कि आखरत के अजाब से पहले अजाबे अदना यानी दुनिया का अजाब जो है हम उनको चखाते रहेंगे और जरूर ब जरूर चखाएंगे। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के वो जो है वो रुजू करें, मानिए शायद के वो गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की बंदगी का रास्ता जो है वो इख्तियार कर लें और अपनी बागियाना रविश को छोड़ दें। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा? मिम्मन ज़ुक्किरा, के जिसे नसीहत की गई हो, भी आयात रब्बे ही उसके रब की आयात के जरिए से, सुम्मा आरादा अन्हा, फिर वो इससे मुंह फेर ले। तो सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की आयात को सुनने के बाद, उस नसीहत को पाने के बाद फिर उससे जो है वो मुंह मोड़ ले। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम यकीनन ऐसे मुजरिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि आखरत में तो बड़ा अजाब आएगा ही, जो जहन्नुम का अजाब है, जब ना इसलाह का मौका मिलेगा, ना अमल का मौका मिलेगा, ना तौबा इस्तगफार कबूल होगी, तो वो बड़ा अजाब होगा, अजाब अल अकबर। लेकिन दुनिया में जो अजाब अल अदना है, छोटे अजाब, तो ये अल्लाह की तरफ से पकड़ के लिए आते हैं, जगाने के लिए, संभलने का मौका देने के लिए। बीमारियां, माली नुकसान, कहत, जलजला, एक्सीडेंट और घरों में जो आजमाइशें आती हैं, वो किस लिए? कि लोग जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। फिर आप देखिए कि ये जो आयत नंबर 23 से 26 है, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। वलकद आतेना मूसल किताबा, इससे पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दे चुके हैं। जैसे आपको किताब दी है, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब जो थी वो दी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की पर जो किताब तौरात नाजिल की गई, तो लोगों ने क्या किया? ईमान लाने की बजाय उन्होंने उसका इनकार किया, और फिर नतीजा क्या निकला कि बड़े अरसे तक बनी इसराइल के लोग मिस्र में जो है वो जिल्लत की जिंदगी बसर करते रहे। और बनी इसराइल के लोग जो थे मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र में फिरौन की गुलामी से निकाला और उस किसी भी कौम को किताब की दौलत से नवाजा, और फिर उस कौम ने जो है उस किताब के साथ कैसा सलूक किया, पैगंबर के साथ कैसा सलूक किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे आपको किताब दी है ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को भी दी थी। तो उस कौम ने क्या किया, उसका अंजाम क्या हुआ? तो अहले मक्का फला तकुन फी मिरियत मिन लिका एही, बस जो है इसी चीज के मिलने से तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने शक किया था ना, तो अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आप लोग इसके बारे में जो है वो शक ना करें। इसके मानी है कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला की किताब है, इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के रसूल है, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल, उन्हें जो किताब मिली थी वो अल्लाह की किताब थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी गई वो भी कुरान मजीद है और वो अल्लाह की किताब है, और इसके बारे में लोगों को शक नहीं करना चाहिए, ना रसूल के बारे में और ना ही किताब के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे इशारा है इस मुलाकात की तरफ जो मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान हुई, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाजों में कमी कराने का मशवरा दिया था। तो कहा जा रहा है फला तकुन फी मिरियत मिन लिकाही, तो बस आपको हरगिज इस मुलाकात में शक नहीं करना चाहिए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने नमाजों को कम कराने का मशवरा दिया था, तो लोगों को इसमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेराज का लोग इनकार भी कर रहे थे ना। वजअलनाहु हुदल्ली बनी इसराइल, और हमने उसे बनी इसराइल की हदायत का जरिया बनाया, किसे, तौरात को या फिर खुद मूसा अलैहिस्सलाम को, बिल्कुल इसी तरह से कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की हदायत का जरिया है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्री बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूकिनून। अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि इमामत का दर्जा कैसे मिलता है, फरमाया कि और जब उन्होंने सबर किया और हमारी आयात पर यकीन लाते रहे तो इनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए, मकानू भी आयातिना यूकिनून, जो हमारे हुक्म से जो है वो रहनुमाई करते थे और वो थे हमारी आयात पर यकीन करते। तो उल्मा का कौल है कि बिसबरी वल यकीनी तनालुल इमामतु फिद्दीन, के सबर और यकीन के जरिए से दीन में किसी को इमामत का दर्जा हासिल होता है। मकसद क्या है, यानी ऐसे नहीं इमामत मिलती जैसे लोग समझते हैं कि कुर्सी से और दौलत से और खानदान से और सरदारी से और जायदाद से और खूबसूरती से, जैसे अहले मक्का भी समझते थे और आज भी लोग समझते हैं, तो इमामत कैसे मिलती है? एक मुद्दत के शबो रोज होते हैं, एक मुद्दत के शबो रोज होते हैं, और प्लेट में रखकर क्यादत नहीं दी जा सकती, यानी ऐसे किसी को हाथ में रखकर क्यादत पेश नहीं की जाती, बल्कि क्या होता है कि तकलीफें उठाई जाती हैं, उन्हें झीला जाता है, अल्लाह की आयात पर यकीन किया जाता है, सबर किया जाता है, और फिर अल्लाह ताला लोगों को दीनी इमामत और पेशवाई के मनसब पर फाइज करता है। तो ये जो आयत नंबर 24 है ये बता रही है कि जब उन लोगों ने सबर किया तो हमने उनमें ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हदायत करते थे, यहदूना बे अम्रिना, हमारे हुक्म से वो लोगों की रहनुमाई करते थे, लम्मा सबरू, और जब उन्होंने सबर किया तो हमने उसको इमाम बना दिया। फकानु भी आयातिना यूकिनून, और जो हमारी आयात पर यकीन किया करते थे। तो इससे आयात पर ईमान और सबर जो है इसका पैगाम मिलता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि इमाम कैसे बन सकते हैं, आयत कैसे बना जा सकता है, तो इसके लिए हर नुकसान तकलीफ को बर्दाश्त करना और अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करना, तब कहीं जाकर जो है वो इमामत मिलती है। ये गाजी, ये तेरे पुर असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। तो कायद बनने के लिए फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। इन्ना रब्बा का हुआ यफसिलु बैनहुम यौमल कयामती फी मा कानू फी यख्तलिफून, यकीनन तेरा रब ही कयामत के दिन उन बातों का फैसला करेगा जिन्हें बनी इसराइल बहम इख्तलाफ करते रहे थे। तो यहाँ पे बनी इसराइल की फिरकाबंदियों की तरफ इशारा है। अगर वो ईमान और यकीन की दौलत से महरूम ना होते तो इख्तलाफ ना करते, अगर वो दुनिया परस्ती में मुब्तिला ना होते तो फिर वो इख्तलाफात ना करते। और आज देखें, आज मुसलमानों का ये हाल है कि कुरान से दूर, दुनिया से मोहब्बत और ईमान और यकीन की दौलत से महरूमी की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा इख्तलाफात और फिरकाबंदियों का जो है वो शिकार है। और नतीजा क्या है कि बनी इसराइल की तरह आज मुसलमान भी फिर जिल्लत और खारी में मुब्तिला है। तो अगर जिल्लत और खारी की जिंदगी से निकलना है तो मुसलमानों को अल्लाह की आयात पर ईमान लाना होगा और जो है वो ईमान और यकीन रखना होगा, सबर करना होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जितने भी इख्तलाफात हैं इनका फैसला कयामत के दिन मैं करूंगा और कोई इसका इनकार नहीं कर सकेगा। अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने जो है इससे कुछ भी रहनुमाई हासिल ना की, क्या इन लोगों को इन तारीखी वाकयात से कुछ भी हदायत ना मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हमने हिलाक कर दिया। कम अहलकना, कितने लोगों को हिलाक किया, मिन कबले में इनसे पहले, मिनल कुरूनी बस्तियों में से, कर्न वाहिद है, कुरून जो है वो जमा है और उम्मतों को कहते हैं। तो कितनी ही कौमों को हमने हिलाक कर दिया, क्या इन लोगों को इन तारीखी वाकयात से कोई इबरत ना मिली। यमशून फी मसाकिनहिम, जिनके रहने की जगहों में ये चलते फिरते हैं और कौमे आद, कौमे समूद, असाबे मदियन, इनकी तबाहशुदा बस्तियों से अहले अरब अक्सर गुजरा करते थे। इन्ना फी ज़ालिका लआयात, इसमें बड़ी निशानियां हैं। अफला यस्माउन, क्या ये सुनते नहीं हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 27 से 30 तक बंजर जमीन से अल्लाह ताला ने मिसाल दी है और कुफार को डरावा और धमकी दी है और अहले हक को फतह और गलबे की बशारत दी है। अवलम यरऊ, क्या इन लोगों ने नहीं देखा। अन्ना नसूकुल मा इलल अर्दी, कि हम हांक कर लाते हैं, हम जारी कर देते हैं पानी को जमीन में, कि हम किस तरह नसूकु हांक कर लाते हैं। सीन व काफ जो है चरवाहे का जानवरों को हांकना, तो मानी है बहा कर लाना अलमा पानी को, इलल अर्दी जमीन की तरफ। जुरुज, जुरुज ऐसी जमीन को कहते हैं जो जमीन जो है वो बेआबो गया हो, ना उसमें पानी हो ना ही सब्जा, खुश्क बंजर और नाकाबले बर्दाश्त जमीन को जुरुस कहते हैं, जिसमें बारिश कम होती हो और फसल ना होती हो, बंजर जमीन। तो क्या इन लोगों ने ये मंजर कभी नहीं देखा कि बंजर जमीन की तरफ हम किस तरह पानी को बहा कर लाते हैं। फनुखरे जो भी जरन, फिर उसी जमीन से हम फसल उगाते हैं, फिर उसी जमीन से वो फसल उगाते हैं कि ताकुलु मिन्हु अनआमहुम व अनफुसहुम, कि जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये खुद भी खाते हैं। अफला युबसिरून, क्या پھر کیا یہ غور نہیں کرتے؟ تو جو اللہ بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، مردہ زمین میں بہار لا سکتا ہے، زمین کو جو زندہ کر سکتا ہے اور بنجر زمین میں پانی بھیج کر وہاں زندگی پیدا ہوتی ہے، کس طرح سے حشرات نکلتے ہیں، فصلیں اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں کہ پھر اسے جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں سمجھ نہیں آتا؟ تو یہ جو مثال ہے بنجر زمین میں لہلہاتی ہوئی کھیتی کی، اس کا مطلب ہے کہ بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ دعوت اسلام جو ہے، اللہ اس کو ترقی دے گا، اللہ اس کو فتح دے گا، دین اسلام غالب آئے گا اور لوگ دنگ رہ جائیں گے، افلا یبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ فَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان سے کہو یوم الفتح، فتح کا دن، فیصلے کا دن، یہاں پہ فتح جو ہے اس سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ قیامت کا دن، ان سے کہو کہ جب فیصلے کا دن ہوگا، لا ينفع الذین، تو نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم ان کا ایمان، ولا هم ينظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو نہ تو توبہ کرنے کی مہلت ملے گی، نہ انہیں ایمان قبول کرنے کا وقت ملے گا، وہ دن ہوگا جزا اور سزا کا دن، وہ دن ہوگا اللہ کی ملاقات کا دن۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَعَارِضْ عَنْهُمْ، کہ اچھا آپ ان سے اعراض کر لیجئے، اچھا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وانتظر اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ پریشان نہ ہوں، پھر کیا ہوگا؟ آپ انتظار کریں، کس چیز کا؟ اللہ کے فیصلے کا، عذاب کا، پھر انہیں سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے گا، پھر جو ہے انہیں پکڑ لیا جائے گا، پھر یہ عذاب کو سامنے آتا دیکھ کر ایمان لانا چاہیں گے اور اس وقت ایمان انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بس آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں، آپ کو جو وحی بھیجی جا رہی ہے آپ اس پر عمل کریں، اور اگر یہ انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کو غلبہ ملتا ہے یا آپ کے کافروں، آپ کے جو کافر ہیں جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، کہ انہیں غلبہ ملتا ہے، کون شکست کھاتا ہے، کون فتح پاتا ہے، اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور اب جو قوم جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جھٹلا دیتی ہے، پھر اس کے لیے عذاب جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ السجدہ، جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت جو ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کفر کرنے والوں کی صفات اور اوصاف بھی سامنے آئے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے اوصاف بھی۔ تو کافر کیا کر رہے تھے؟ قرآن کا انکار کر رہے تھے، رسول کا انکار کر رہے تھے، آخرت اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے تھے، اور ایمان لانے والوں کے اوصاف کو سامنے رکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور کائنات میں جو دلائل ہیں توحید اور آخرت کے، ان پر غور و فکر کر کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں، رب کی ملاقات پر انہیں سچا یقین ہوتا ہے، اور پھر ان کی خاص خوبیاں ہیں کہ وہ آخرت کے خوف سے اتنے ڈرتے ہیں، اتنے بے قرار ہوتے ہیں کہ ان کی نیند جو ہے نیند اٹھ جاتی ہے، ان کو نیند نہیں آتی، بے قراری کی وجہ سے وہ راتوں کو بستروں پر پہلو بدلتے ہیں، وہ گھوڑے بیچ کر نہیں سوتے، یدعون ربہم خوفا وطمعا فمما رزقناہم ینفقون، اور علامہ اقبال نے بڑی اہم بات کہی تھی، کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تو جو اللہ کے پیارے ہیں پھر انہیں جو ہے وہ نماز اچھی لگتی ہے، پھر انہیں انفاق اچھا لگتا ہے، پھر وہ جنت کا شوق ان کی راتوں کی نیند کو اڑا دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اس راستے میں پیش آنے والے مسائل پر صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات اور وعدوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کرتا ہے، ایسی جنت کی شکل میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کے بارے میں تصور بھی گزرا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ میرے دل میں تو، میرے لب پہ تو، تیری شان جلا جلالہ، میری زندگی تیری آرزو، تیری شان جلا جلالہ، تو سمندروں میں، سحاب میں، تو ہواؤں میں، تو سراب میں، تو مہک رہا ہے گلاب میں، کرے ہر زبان میں گفتگو، تیری شان جلا جلالہ، مجھے چھوڑتی نہیں حیرتیں، کروں کیا بیان تیری عظمتیں، کہاں میں کہاں تیری رفتیں، کہیں خلوتیں کہیں جلوتیں، کہیں خاموشی کہیں ہا ہو ہو، تیری شان جلا جلالہ۔ اور یہ تھی سورۃ السجدہ، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اس دنیا کی زندگی میں سجدہ شکر بجا لانے والا بنائے، اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے والا بنائے، اور ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے کہ جنہیں جو ہے وہ زندگی کے مقصد کا شعور مل گیا، اس کی سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ہر سانس، ان کے دل کی دھڑکن، ان کا ہر لمحہ، ان کی ہر بات جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں جو ہے وہ گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین مسلمان بنائے، مجھ سے اور آپ سے اور سارے مسلمانوں سے راضی ہو جائے، ان خوبصورت اور پیارے اور بہترین بندوں میں شامل ہو جائے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کی بندگی میں گزار دی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے قرآن کا شعور دے دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے، یا رب العزت تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم کمزور، بڑے ہی بے بس اور عاجز بندے، ہم آپ سے اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اِنَّا أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى، اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي، اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجتين يا رب العالمين. اور یا اللہ بس تو ہمیں ذکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہمیں تقدیر کے فیصلوں پر راضی کر دے، اپنے فیصلوں پر راضی کر دے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب العزت، قرآن جو ہے اس میں ہم تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اور اے اللہ تو ہمیں علم کے ساتھ باعمل بنا دے. تو یہ وہ قرآن ہے جس نے عمر کو فاروق بنایا، ابو بکر کو صدیق بنایا، عثمان غنی کہلائے، اور اے اللہ انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی. اور اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے، ایک قوت، ایک جرت، ایک ہمت تو ہمیں دے دے. یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اس کو پڑھنے کی توفیق بھی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی، اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کر. بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز، جو بیٹا چاہتے ہیں ان کو بیٹے کی نعمت سے نواز، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹی کی نعمت سے نواز. ہمارے گھروں میں رزق حلال کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں میں، ہمیں اور ہمارے شوہروں میں، ہمیں اور ہمارے بچوں میں محبت دے دے. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر. یا رب العزت تو ہم سب مسلمانوں کو متحد کر دے. یا رب العزت جو گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو نیک ساتھی عطا کر. اور اے اللہ جو تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ تو ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے. ربنا حب لنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا وحب لنا من لدنک رحمہ رشدا، اور اپنی طرف سے ہمیں رشد دے دے، ہدایت دے دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انا نسألوك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شر نفوسنا. يا الله تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.